ये बांग्लादेश बेतार का विदेश विभाग है। स्वागत है आपका हिंदी न्यूज में। मैं हूं अख्तरी बेगम। बांग्लादेश में आने वाले 13वें राष्ट्रीय संसदीय निर्वाचन और रिफरेंडम के लिए नामांकन पत्रों की स्वीकृति और रद्द करने पर रिटर्निंग अफसरों के निर्णयों के विरुद्ध अब तक निर्वाचन कमीशन पर कुल 197 आवेदनों को दर्ज करवाया गया है। आज बुधवार को तीसरे दिन ढाका में अगरगांव में स्थित निर्वाचन आयोग भवन पर सुबह 10 बजे से आवेदनों को दर्ज करवाना आरंभ हुआ, जहां पर प्रार्थियों ने आवेदन फाइलिंग सेंटर पर स्थित 10 आंचलिक बूथों पर आवेदनों को दाखिल करना शुरू किया। आगामी शुक्रवार तक आवेदनों को दाखिल किया जा सकेगा। बांग्लादेश और उरुग्वे ने दोनों देशों के बीच गंभीर कूटनीतिक सहयोग के प्रति महत्वपूर्ण प्रक्षेप को रेखांकित करते हुए द्विपाक्षिक राजनीतिक कंसल्टेशंस को नियमित और ढांचा गठित करके प्रातिष्ठानिक रूप देने के लिए एक समझौता स्मारक MOU को हस्ताक्षरित किया है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच द्विपाक्षिक राजनीतिक कंसल्टेशंस प्रथम बार होने के बाद MOU हस्ताक्षरित हुआ है। विदेश सचिव असद आलम सियाम और उरुग्वे के बांग्लादेश के लिए अस्थायी राजदूत अल्बर्टो एंटोनियो गुआनी अमरीला ने समझौता स्मारक हस्ताक्षरित किया एवं कंसल्टेशंस पर अपने अपने पक्षों का नेतृत्व दिया, जो कि आज बुधवार को राजधानी में राष्ट्रीय अतिथि भवन पद्मा पर अनुष्ठित हुआ। बांग्लादेश में BNP एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने 11 जनवरी से 14 जनवरी के लिए देश के उत्तरी अंचल का दौरा करना निर्धारित किया है। दौरा करने के बारे में आज बुधवार को संबंधित डिप्टी कमिश्नरों और रिटर्निंग अफसरों को BNP ने औपचारिक तौर पर जानकारी दिलाया। पत्र शुरू किया गया कि BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान जुलाई योद्धाओं को जो शहीद हुए हैं उन लोगों की कब्र पर जाएंगे एवं उन्हें जो दीर्घ गणतांत्रिक आंदोलन में मारे गए हैं श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दुआ महफिल में अंशग्रहण करेंगे एवं धर्मीय तथा सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होंगे, जिसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की रूह की शांति के लिए आयोजित किया जाएगा। आगे और भी कहा गया कि उक्त दौरा संपूर्ण रूप से धर्मीय और सामाजिक कार्यक्रमों का अंश है एवं बांग्लादेश निर्वाचन कमीशन के आचरण विधि के उल्लंघन का कोई सवाल नहीं है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ICT-1 ने खदेड़ी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र और भूतपूर्व ICT सलाहकार सजीव वाजिद जय तथा ICT विभाग के लिए राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक के विरुद्ध मानवता विरोधी अपराधों में चार्ज गठन करने पर सुनवाई अनुष्ठित करने के लिए 11 जनवरी निर्धारित किया है। अदालत ने आज बुधवार को आदेश पास किया। विगत वर्ष 17 दिसंबर को ICT-1 ने सजीव वाजिद जॉय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नियुक्ति का आदेश दिया था, जो केस में मुख्य रहे हैं। अदालत ने आदेश पास किया समाचार पत्र नोटिसों की प्रकाशना के बावजूद सजीव वाजिद जॉय हाजिर होने में विफल रहे। बांग्लादेश नेशनल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू NBR ने ऑटोमेटेड ऑनलाइन वैल्यू एडेड टैक्स VAT रिफंड सिस्टम को चालू किया है। NBR चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल रहमान खान ने आज बुधवार को राजधानी में अगरगांव में स्थित NBR पर सिस्टम का उद्घाटन किया। आप हिंदी में समाचार सुन रहे हैं बांग्लादेश बेतार के विदेश विभाग से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड सहित सेना व्यवहार के लिए अधिग्रहण करने के लिए सुझावों की एक रेंज पर चर्चा किया है। व्हाइट हाउस ने BBC को बताया कि ग्रीनलैंड अधिग्रहण फेलो नेटो मेंबर डेनमार्क का एक सेमी ऑटोनोमस अंचल राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता था। उक्त बयान यूरोपियाई नेताओं द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के बाद दिया गया। बर्तानिया और फ्रांस ने यूक्रेन में सेना बलों की तैनाती पर उद्देश्य की घोषणा किया है यदि रूस के साथ शांति चुकती हुआ। बरतानवी प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने इसे यूक्रेन के गठबंधनों के साथ पेरिस में अनुष्ठित बातचीत के बाद कहा। उन्होंने कहा, बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन में सेना हब्स की स्थापना करेगा एवं भविष्य अग्रासन को रोकने के लिए हथियारों और सेना सरंजाम के लिए सुरक्षा सुविधाएं निर्माण करेगा। मित्रों ने यह भी प्रस्तावित किया है कि यूक्रेन में कोई भी विदेशी सेना बल एक युक्ति संगत लक्ष्य होगा, परंतु घोषणा पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं किया गया है। और अब अंत में, यमन में सऊदी अरब नेतृत्व वाली गठबंधन ने देश के दक्षिणी धेल गवर्नरेट पर आक्रमण किया है। इसने बताया, इसका लक्ष्य था रियाद में बातचीत के लिए निर्धारित प्लेन पर सवार हुए बिना उनके नेता के भाग जाने के बाद सेक्शनिस्ट सेना बल। और यहीं पर समाप्त हुआ हमारा आज का हिंदी में समाचार। प्रिय श्रोताओं, आप ये समाचार बांग्लादेश बेतार के वेबसाइट www.betarbetar.gov.bd पर भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।